नमस्कार, आज हम एक बहुत ही खास उद्बोधन पर बात करने वाले हैं। नया इंसान बनाएंगे, नया जमाना लाएंगे।
जी, ये पूज्य गुरुदेव योग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है।
हाँ, और इसमें आने वाले समय, जो चुनौतियाँ हैं और कैसे एक नया युग बन सकता है, इस पर काफी गहराई से बात की गई है। तो चलिए समझते हैं इसे।
बिल्कुल।
तो पूज्य गुरुदेव, शुरुआत में ही एक लगभग 12 साल के एक ऐसे समय की बात करते हैं जो काफी उथल पुथल भरा हो सकता है।
हाँ, वो कहते हैं कि इसमें विनाश भी होगा और सृजन भी, दोनों साथ साथ चलेंगे।
और वो प्रकृति के एक तरह से कहें तो नाराज होने का जिक्र करते हैं, जैसे कि भयानक बाढ़ें, तूफान, भूकंप।
जी, और मौसम में बड़े अजीब बदलाव, नई नई बीमारियां, ऐसी जिनका शायद डॉक्टरों को भी बताना हो।
और इसके साथ ही वो समाज में गिरावट की भी बात करते हैं, बढ़ते अपराध, चोरी।
हाँ, सामूहिक दुर्व्यवहार, घरेलू हिंसा, जैसे बहुओं को जलाना, इन सब का उल्लेख है। मतलब एक सामाजिक पतन का संकेत।
और ये सिर्फ बाहरी घटनाएं नहीं है, है ना?
हाँ।
स्रोत इन्हें किसी गहरी चीज का लक्षण मानता है।
बिल्कुल सही। मतलब ये सिर्फ सतह की बात नहीं है, स्रोत कहता है कि ये एक गहरे आध्यात्मिक और नैतिक असंतुलन का संकेत है।
अच्छा।
और ये चीज आज की जो हमारी चिंताएं हैं पर्यावरण को लेकर, समाज को लेकर, उनसे सीधे जुड़ती हैं। बस यहाँ देखने का नजरिया थोड़ा आध्यात्मिक है। और दिलचस्प बात ये भी है कि स्रोत अलग अलग धर्मों की भविष्यवाणियों का भी हवाला देता है।
जैसे
इस्लामी, ईसाई यानी बाइबल से, और हिंदू ग्रंथों में भविष्य पुराण से, कि ये सब भी एक बड़े बदलाव या संकट के समय की तरफ इशारा करते हैं।
और पर्यावरण संकट पर भी जोर है ना? हवा, पानी का जहरीला होना।
हाँ, गंगा जल तक का जिक्र है कि वो भी प्रदूषित हो रहा है, कारखानों का धुआं, और जो हम प्राकृतिक संसाधन हैं, तेल, कोयला, धातुएं, उनका जिस तरह बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे हैं,
उससे पृथ्वी खोखली हो रही है, ऐसा कुछ।
हाँ, और इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ सकता है। मतलब शारीरिक कमजोरियां, विकलांगता, ये सब।
ये तो काफी गंभीर चेतावनी है, और शायद एक और बड़े खतरे का भी जिक्र है।
जी, युद्ध का खतरा, और खास तौर पर परमाणु हथियारों से होने वाली तबाही का।
ओहो।
स्रोत के अनुसार ऐसा युद्ध सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, बल्कि धरती की उपजाऊ शक्ति को भी खत्म कर सकता है।
ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है।
और इसके साथ साथ महंगाई, जरूरी चीजों की कमी, इसकी भी चेतावनी है।
बाप रे, मतलब चुनौतियां ही चुनौतियां। लेकिन क्या कोई रास्ता भी बताया गया है इससे निकलने का?
हाँ, यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। स्रोत कहता है कि जो बाहरी सुरक्षा के तरीके हैं, जैसे डंडे लेकर खड़े हो जाना या पुलिस लगा देना,
वो काफी नहीं है।
वो नाकाफी है,
अपर्याप्त है। इसके बजाय जोर दिया गया है आध्यात्मिक शक्ति और तप पर।
तप मतलब जैसे, हाँ, जैसे भगीरथ अपने तप से गंगा को धरती पर लाए थे, या जैसे महर्षि दधीची ने अपनी हड्डियां दान दे दी थी वृत्रासुर को मारने वाले हथियार वज्र के लिए।
अच्छा, तो मतलब असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर है।
बिल्कुल। यहाँ पर जो मुख्य तर्क है वो यही है कि असली समाधान बाहरी उपायों में उतना नहीं है जितना कि व्यक्ति की अपनी आध्यात्मिक शक्ति जगाने में और चरित्र को बदलने में है, अंदरूनी बदलाव।
ये तो आज की दुनिया के हिसाब से काफी अलग सोच है, जहाँ हम हर चीज का तकनीकी समाधान ढूंढते
हैं। सही कहा। और इसमें पूज्य गुरुदेव अपनी भूमिका भी स्पष्ट करते हैं।
वो क्या कहते हैं?
वो कहते हैं कि उनका काम है अपने अनुयायियों की, जिन्हें वो प्यार से बच्चे कहते हैं, और उनकी संख्या करीब 24 लाख बताते हैं, उनकी रक्षा करना, उनको रास्ता दिखाना, और वो अपनी शक्ति को दो हिस्सों में बांटने की बात करते हैं। एक हिस्सा अपने अनुयायियों की सुरक्षा और उनकी उन्नति के लिए,
और दूसरा
हिस्सा बाकी पूरी दुनिया के कल्याण के लिए। वही वसुधैव कुटुंबकम वाली भावना से, मतलब पूरी पृथ्वी ही परिवार है।
तो लक्ष्य सिर्फ उनको बचाना नहीं,
बल्कि उन्हें समर्थ बनाना है। ऐसा बनाना है जैसे शिवाजी जैसे वीर, सुदामा जैसे निष्ठावान, विश्वामित्र जैसे तपस्वी। मतलब वो महामानव बनाने की बात करते हैं।
महामानव?
हाँ, जो शायद पैसों से अमीर न हो, पर जिनमें श्रद्धा हो, अच्छे विचार हो, जो समाज के लिए जिए, चरित्रवान हो।
तो ये तो एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण हुआ, सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरे विश्व के बदलाव का।
एकदम। ये व्यक्तिगत उन्नति को वैश्विक परिवर्तन से जोड़ता है। स्रोत एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जहाँ एकता हो, बराबरी हो, एक जैसा कानून हो, एक ही धर्म हो, और सब लोग एक परिवार की तरह रहें।
ये तो बहुत आदर्श स्थिति लगती है।
और पूज्य गुरुदेव ये भी आश्वासन देते हैं कि वो अपने सूक्ष्म शरीर से यानी देह छोड़ने के बाद भी मार्गदर्शन और सुरक्षा देते रहेंगे। खासकर सन 2000 तक तो बहुत सक्रिय रहने की बात उन्होंने कही थी। तो मूल रूप से ये संदेश हर व्यक्ति को जिम्मेदारी लेने और मिलकर कोशिश करने का आह्वान है कि आओ एक बेहतर दुनिया बनाने में भागीदार बनो।
तो अगर हम सार निकालें तो ये उद्बोधन आने वाले संकटों के प्रति आगाह करता है, पर साथ ही एक उम्मीद भी जगाता है।
हाँ, उम्मीद इस बात की कि आध्यात्मिक शक्ति और चरित्र के निर्माण से हम न सिर्फ खुद को बदल सकते हैं बल्कि दुनिया को भी।
और ये अनुयायियों को सिर्फ सुरक्षा का एहसास नहीं दिलाता बल्कि उन्हें एक नए युग को बनाने में सक्रिय होने के लिए प्रेरित भी करता है।
बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना कि आज के समय में इस उद्बोधन के संदर्भ में एक नया इंसान बनाने का असल मतलब क्या हो सकता है।
हाँ, क्या ये सिर्फ अंदर की साधना है या इसमें आज की जो मुश्किलें हैं उनसे निपटने के व्यवहारिक तरीके भी शामिल हैं।
सही कहा, ये एक अहम सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए कि व्यक्तिगत और सामूहिक तौर पर हमें क्या प्रयास करने होंगे।